चरित्र मोक्षम ना लेक्चर नंबर 13
परंतु ये अपसरण के दौरान और क्या बातें होती, वो तो क्रमकरण भी होता है। पहले बीसीए है, फिर पीसीए, उससे डेढ़ गुना और 40 से जो मोह है उसको दो गुना, ऐसा उसका प्रपोर्शन था। अब बीच बीच में ऐसे कुछ अभी विशिष्ट विशुद्धि ऐसी है कि मोह जो 40 या लास्ट था वो पहले बीच में आता है, बीच में आता है और फिर वो ज्ञान वरना विचार बाद में रहते हैं, और भी वो नीचे आ जाता है, सबसे अल्प मोहनीय का होता है, और वो जो नाम गोत्र बीच में था वो भी आगे चला जाता है, ज्ञान वरना भी उसके अंदर आ जाते हैं, कम स्थिति वाले हो जाते हैं, यानी सबसे अंत में पोजीशन क्या होती है, सबका स्थिति बंद पल्य का असंख्यात वापा, यानी असंख्यात वर्ष, मोह का सबसे कम, उससे असंख्यात गुणा ज्ञान वरना भी तीन का, उससे असंख्यात गुणा नाम गोत्र का, और उससे विशेष अधिक वेदनीय का, ये अंत में पोजीशन आ गई। जब इतनी पोजीशन होती है तो असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा शुरू हो जाती है। क्रमकरण के अंत तक जब जीव आता है तब अभी तक जो उदीर्णा होती थी, उदीर्णा यानी ऊपर का अपकर्षण होकर जो उदयावली में आते थे द्रव्य यानी परमाणु, उसका प्रमाण समय प्रबद्ध का असंख्यात का भाग होता था। अब इतना जो बढ़ गया है तो वो असंख्यात समय प्रबद्ध इतने परमाणु उदयावली में आकर जुड़ते हैं, और उदयावली में आने वाले तो फिरते ही फिरते हैं, क्रम से एक एक समय उदय में आता आता वो निषेक उदय में आकर खिर जाते हैं। यानी यहाँ तक तो अपनी बात हुई थी, असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा होने लगती है। अब जो असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा होने लगती, उसके पश्चात भी हजारों, जिसको कहेंगे संख्यात हजार स्थिति बंधाक्षर होते चले जाते हैं, और उसके बाद एक नया यहाँ कार्य होता है, उसका नाम है देशघातीकरण। आपके वो दो नंबर के चार्ट में है ना, हमने ये सारे कौन कौन से करण यानी या कर्मों की अवस्थाओं को करण कहा है, क्योंकि करण शब्द अनेक जगह आता है, हमारे शब्द कारक में भी करण कारक होता है, करण आत्मा के परिणामों को भी कहते हैं, करण और सूत्र को भी कहते हैं, जो गणित के सूत्र है उसको भी करण, फॉर्मूले जो होते हैं उसको भी करण कहते हैं, करण इंद्रियों को भी कहते हैं, अंतःकरण है वो मन को भी अंतःकरण यानी अंदर वाला इंद्रिय जो है, तो इसे करण शब्द के अनेक अर्थ है। यहाँ पर भी वो तीन करण के लिए भी करण कहते हैं, करण लब्धि वाले तीन करण, और यहाँ जो दस करण है कर्मों की अवस्था उसको भी करण कहते हैं, परिणामों को तो करण कहते ही कहते हैं, जीव के परिणामों को भी करण कहते हैं।
क्योंकि जब सम्यक्व जब प्रमोक्षण सम्यक ही किया था उस समय भी उसको असंख्यात समय प्रबोधों की निर्जरा हुई
नहीं हुई, असंख्यात गुणा निर्जरा होना अलग बात है और असंख्यात समय प्रबद्ध की, वहाँ ऑलरेडी जितने निषेक थे उन गुण श्रेणी रूप से जो रचना हुई थी, गुण श्रेणी में जो अपकर्षित द्रव्य है पहले निषेक में जितना दिया उससे असंख्यात गुणा दिया जाने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा देय द्रव्य जिसको कहेंगे, परंतु वो उसकी वैल्यू असंख्या समय प्रबद्ध जितनी नहीं थी, यहाँ पर जितनी हुई है उतनी वहां नहीं थी, वो भले असंख्यात गुणाक्रम से गिरेंगे पर असंख्यात गुणाक्रम होना अलग बात है और असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्ण होना वो बात अलग है। यानी यहाँ की निषेक ऑलरेडी जो अपकर्षण के द्वारा गुण श्रेणी के द्वारा यहाँ तो निषेक तो बड़े बड़े होते ही गए थे, और यहाँ जो एक एक समय में जो उदीर्ण होगी वो असंख्यात समय प्रबद्ध होगी, यानी कितनी अधिक निर्जरा यहाँ होने वाली है ये बात हमें यहाँ से सूचित होती है।
तो ये नौवें गुण स्थान के पहले इस प्रकार से असंख्यात समय प्रबद्ध की निर्जरा
नहीं थी, इतनी नहीं थी, असंख्यात बात अलग है और असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्ण होना बात अलग है। हाँ, ये उदीर्ण यानी उदयावली में इतने असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य दिया जाता है, और फिर वो गुणित प्रमाण में अन्य भी वो कांड घात के द्वारा अपकर्षण के द्वारा वो सब आ ही रहा है, और फिर वो जो निषेक इतने उसमें एडिशनल द्रव्य इतना दिया है वो सब खिर जाएगा, क्योंकि उदयावली में आया है तो अभी खिर जाएगा। ये विशेषता है असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्ण यहाँ से ही शुरू होती है श्रेणी। अंत जब क्रमकरण अभी समाप्त तो होने को आया है तब वो शुरू हुई है, और उसके बाद देशघातीकरण शुरू हुआ, पर बीच में भी संख्यात हजार बार स्थिति वृंदाक्षरण होते हैं, कितने हजार वहाँ अंतर्मुख चले जाएंगे बीच में। अभी जितना जिस अंतर्मुख का प्रमाण जितना है यथायुद्ध केवल ज्ञान गम्य है, हम उसको अंतर्मूर्ति इतना ही कहेंगे। इतना ही अंतर्मूर्त है फिर भी नौवे गुणस्थान का काल इतना छोटा है। हमने बहुत बार सुना भी है ऐसा, हम मानते हैं कि जीव अंतरंग में कितने समय तक स्थिर हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, चेतना देना 48 मिनट बराबर है ना। अंतर्मूर्ति यथायोग्य, क्योंकि छठे से भी आगे के सभी गुणस्थान के मिलकर काल भी छठे से छोटे है। अरे पौना घंटा कहा, 1 मिनट भी नहीं होगा वहां पर। हमारे मिनटों में सेकंडों में गिनो मत, इतना छोटा काल है वो। ये 48 मिनट दो घड़ी ये कहने की वजह, जैसे आप कहते ना मैं अभी आया 2 मिनट में और आधा घंटा लगा दे वैसे कहते मैं अभी 2 घड़ी में केवल ज्ञान ले लेंगे, 2 घड़ी में लेंगे, पर लेंगे तो कुछ सेकंडों में। वो 2 घड़ी ने अंतर्मुख कहने की पद्धति है, परंतु इतना 48 मिनट कभी कोई स्थिर नहीं रहता है अंदर में, जरूरी नहीं उसको। बिल्कुल समय दर्शन के लिए भी ऐसा ही है, इतना लंबा काल नहीं लगता है उसको। अनिवृत्तिकरण की अपेक्षा से हिस्सा लेना है, यानी वहाँ जो असंख्यात गुणा गिरजरा होना अलग बात है, और असंख्यात समय उसमें भी आता होगा शायद। अभी ये जो इसका प्रथम उपशम समय को निकालो ना, वहाँ भी अंतर के बाद शायद वहाँ पर भी होता होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पर इसी पुस्तक में प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में जहाँ अंतर हुआ ना उसके पश्चात अंतर के पहले लेना है। अनिवृत्तिकरण के जहाँ पर उन्होंने अंतर बनाया ना वहां पर उनकी बात करनी चाहिए। उसको अगर भागार बदलता है तो वहां पर भी असंख्या समय प्रबंधन की होगी, वहां पर हमें देखना चाहिए उसको। देखो प्रमाण है ना, एक समय प्रबंध में जितने प्रमाण होते हैं उससे असंख्या गुणा को प्रमाण आता है। ये उदीर्णा इतनी 85 पेज पर, असंख्यात लोक का भाग देकर ही वहां लाया है। पल्ले के असंख्यात भाग वाला अगर भागार बदलता है तो ही वो असंख्यात समय प्रबंधों की निर्जरा हो जाता है। देख लेते अभी हम बाद में वहां 85 से आसपास वो देख लेना। हाँ अभी हम आते अपने पेज नंबर जो देशघातीकरण हमने कल देखा था, और अभी हमको हाँ पेज नंबर 171 पर 171 ये देशघाती क्या होता है उसकी बात हमने कल देखी। ये जो घाती कर्म है उसमें प्रकृतियां दो प्रकार की है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, और उनके जो स्पर्धक जो अनंत है वो 4 नामों से उसका वर्णन किया जाता है, जिसका अधिक यानी कम से मिनिमम जघन्य से उत्कृष्ट की ओर बताना है तो लता, दारू, अस्थि और शैल। उसमें शैल भाग वाले, अस्थि भाग वाले और दारू के अनंत भूभाग, ये सारे जो स्पर्धक है उसको कहेंगे वो सर्वघाती स्पर्धक, और दारू का अनंत वा भाग, दारू यानी वो तो फास्ट जैसे उसको उपमा देगी समझाए, और लता भाग वाले ये कैसे है देशघाती वाले जो सर्वघाती प्रकृति है, जैसे केवल ज्ञानावरण ये सर्वघाती प्रकृति अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करने वाली प्रवृत्ति है, तो उसके स्पर्धक कैसे है तो मात्र सर्वघाती, यानी केवल ज्ञानावरण में कौन कौन से हो गए, शैल अस्थि और दारू का बहुभाग। तो कितना भी कम अनुभव क्यों ना हो जाए वो सर्वघाती ही रहेगा। जो देशघाती प्रकृति है, फॉर एग्जाम्पल मति ज्ञानावरण, एक हम प्रकृति लेके बात करते हैं, उसमें कौन कौन से स्पर्धक हैं, शैल भी है, अस्थि भी है, दारू वाले भी और लता वाले भी है, बंदे भी कभी थे उसमें, वो सर्वघाती का कभी उदय नहीं आने वाला है। बंधते हैं तो उसमें सब बनते हैं, परंतु अभी यहाँ नया बंध भी हमने पहले देखा था, द्विस्थान का तो बंध होने लगा था प्रशस्त समय में, फिर भी वो देशघाती रूप से पूरा नहीं हुआ था। दारू वाला भी बनता था, उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी तो बंधे थे। अब यहाँ पर क्या विशेषता होगी, जो देशघाती प्रकृतियाँ हैं जिसमें बंध होते समय सर्वघाती देशघाती दोनों बनते थे, अभी उसमें वो सर्व का बंध देशघाती रूप से होगा, सर्वघाती रूप से नहीं होगा, फिर भी उसको द्विस्थानगत देशघाती कहेंगे। यही बात यहाँ हम पढ़ेंगे। देखो 240 की टीका, ये कल हमने पढ़ा था, फिर पढ़ते हैं। क्रमकरण कहकर अब देशघातीकरण कहते हैं, वहाँ पहले प्रकृतियों का सर्वघाती स्पर्धत्व अनुभाग बांधा था, सत्ता में तो पड़ा है, अब देशघातीकरण से लेकर दारुलता समान द्विस्थानगत देशघाती स्पर्धक रूप ही अनुभाग को बांधता है। ये दारुलता क्यों कहा और ये नीम कांजिर क्यों नहीं कहा? बहुत अच्छा, घाती कर्मों की बात चल रही है, अघाती कर्मों में कोई देशघाती सर्वघाती नहीं होते। वहां असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण उदीर्णा का प्रारंभ होने के पश्चात, जो कब प्रारंभ हुआ था, क्रमकरण के अंत में, संख्या हजार स्थितिबंधावसरण होने पर, अब क्रम क्रम से कोई कोई प्रकृतियाँ वो देशघाती रूप से उसका बंध प्रारंभ होता है। ज्ञानावरण में पहले ज्ञानावरण का नंबर लेना है तो मनपरे ज्ञानावरण, फिर अवधि ज्ञानावरण, फिर चक्षु ज्ञान, इस तरह से उसमें नंबर लगता है, और अंतराय में दानांतराय लाभांतराय, इस तरह से उसका अनुक्रम, और दर्शन में अवधि दर्शन, फिर इस तरह से चक्षु दर्शनावरण, फिर अचक्ष और फिर चक्षु। अभी हम इसको पढ़ेंगे। देखो मन परे ज्ञानावरण और दानांतराय का देशघाती बंध होता है। अब जब जो जो नाम लिए हैं उसके बाद फिर इतने ही संख्या हजार स्थितिबंधावसर और होने पर दो नंबर पर कसके किसका होता है देशघातीकरण, अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय का, फिर शुद्ध ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय। उसके बाद वैसे बीच में वो स्थिति मंदावसरण चल रहे हैं, उसके बाद चक्षु दर्शनावरण अकेला उसको लिया। हाँ कौन कौन से एक साथ होते हैं, बस वही, कभी दो है, कभी तीन है, कभी एक ही है सिंगल, जो जैसा होता है उसका वर्णन लिया चक्षु दर्शनावरण। और पांचवे पॉइंट पर देखो मति ज्ञानावरण उपभोगांतराय का, और छठे में वीर्यांतराय का देशघाती बंध होता है। ये समझ नहीं बात, अभी वो प्रश्नोत्तर वो भी हमने देखा था कि यहाँ संज्वलन वगैरह को क्यों नहीं लिया, तो पांचवे गुणस्थान में ही मोहनीय का जो देशघाती कारण वहाँ हो जाता है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नहीं की। अब उसके पश्चात यहाँ क्या होगा, तो अंतरकरण नाम का प्रोसेस होगा। वैसे हमें प्रथमोक्षम में भी अंतर करता है वो देखा था मोनिय में, निदर्शन मोनिय में, द्वितीयोक्षम के काल में भी तीनों दर्शन मोनिय में एक साथ अंतर होता है वो भी बात की थी। अब ये अंतर किसमें करेगा, चारित्र मोनिय में। केवल बंध का देशघातीकरण वो बंध में हुआ, सत्ता का भी अनुभव घट ही रहा है। हाँ, वो तो चल ही रहा है, अनुभव कांड घात होते हैं और वो भी अप्रशस्त कर्मों में हो रहे हैं। अप्रशस्त कर्म में देह घाती, सर्वघाती और अघाती सब में होगा, पर यहाँ नवीन बंध है वो देशघाती रूप से हो रहा है, ये इतना यहाँ से देखा। अब यहाँ अंतरकरण वाला जो हम देखेंगे, ये जरा चार्ज भी लगा, तो अंतरकरण जो हमने सम्यक के काल में जो अंतर होता है वैसा ही यहाँ पर चारित्र मोहनी में अंतर होता है। अब चारित्र मोनी की प्रकृति कितनी बाकी है यहाँ पर, हाँ 21, क्योंकि अनंतानुबंधी चार के क्या किया है, विसंयोजना हो चुकी, जो क्षायिक है उसके तो नष्ट हो चुकी है, और इसने तो टेम्पररी तो विसंजना तो किल कर ही दी है। अब उसकी बात अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। आपका प्रश्न है देशघाती में केवल ज्ञानावरण का देशघातीकरण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है आप ही बताना। वो सर्वघाती है, कैसा भी मंद क्यों ना बन दे वो सर्वघाती ही है, उसमें देशघाती हो ही नहीं सकते है ना। किसी भी हमने सर्वघाती का नाम ना निद्राओं का नाम लिया ना किसी का नाम लिया, वैसे तो निद्रा यहाँ बनती ही नहीं है, चक्षु दर्शनावरण ही बन रहे हैं। यहाँ कौन कौन सी बन रही पहले ये टोटल करते, देशघाती जब कर्म हुआ था तो कौन कौन सी बन रही थी, ज्ञानावरण की पांच बन रही थी, उसमें केवल ज्ञानावरण को छोड़कर चार में देशघातीकरण हुआ। दर्शनावरण की चार बन रही थी, उसमें से केवल दर्शनावरण को छोड़कर बाकी तीन में हुआ, अंतराय पांचों बनती थी, पांचों के नाम यहाँ ले लिए। और यहाँ मोहनी में क्या बन रहा है, एक पुरुष वेद और चार संयोजन, बाकी कुछ बन रहा है नहीं, बाकी बंद विचित हुई सब। तो उसमें क्यों नहीं देशघाती हुआ, वो सारे देशघाती प्रकृति है, तो क्योंकि उसका ऑलरेडी हुआ है पहले पांचवें गुणस्थ का, ये उसका उत्तर है। तीन घाती कर्मों में देशघातीकरण हुआ, केवल दर्शनावरण केवल ज्ञानावरण को छोड़कर, जो बनने वाली उसी में देशघातीकरण हो रहे हैं ना, जो नहीं बनने वाली उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। निद्रा वगैरह सर्वघाती है, वो यहाँ बनती भी नहीं है, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। हाँ, जो बंद विच्छित थी उसकी बात ही नहीं, यहाँ जो बन रही वो किस किस रूप से बन रही है, किस अनुवाद रूप से बन रही उसकी चर्चा। अब ये अंतरकरण की बात है, अभी हम 241 की टीका पढ़ेंगे, 171 पृष्ठ पर। उस देशघाती करण के ऊपर ऊपर यानी उसके पश्चात संख्या हजार स्थिति बंद जाने पर, हमने एक बार ये संख्या हजार कितनी बार आता है ये हमने लिख रखा था हमारे स्वाध्याय के लिए। हर बार वो संख्या हजार केवल हजार नहीं है, कितने तो करोड़ों, क्योंकि उसका अगर हम हिसाब निकालने जाते हैं एट ए टाइम पल्ले का संख्या तो आप तो इतना करने के लिए कितना लगेगा, तो कितने कोड़ा कोड़ी बार उसका उत्तर आता है, यानी कितने बार, और एक एक होने के लिए एक एक अंतर्मुत लगता ही है। अभी 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 बार में उसके पहले भी बहुत बार हो गए, अभी जो देशघातीकरण के देखे उसी में 5-6 बार हो गए, उसके पहले जो हमने क्रमकरण देखा था वो हर एक के बीच बीच में संख्या हजार बार हो गए थे। फिर भी वो अंतर्मूल बहुत छोटा है, पूरे 90 का जो हम अपने घड़ी के हिसाब से उसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ देखते, उस देशघातीकरण के ऊपर उसके पश्चात संख्या हजार स्थितिबंध जाने पर मोहिनी की 21 प्रकृतियों का अंतरकरण करता है, उसमें अंतर हो जाता है। अभी अंतरकरण हमने जो सम्यक संबंधी जो देखा था दर्शन मोहिनी में, वैसा यहाँ चारित्र मोहिनी में, अभी प्रकृति अजुदी, इसमें भी एक रूल है, यहाँ उदय किस किस का है पहले ये नक्की करते हैं, मोहिनी में उदय किस किस का है, किसका क्रोध का के मानकी के माया का के लोग किसी एक का उदय, और वेद में किसका उदय है, कोई भी, तीनों वेद में से उदय की बात है, बंद पुरुष वेद का ही हो रहा है उदय, तीनों वेद में से किसी भी एक वेद का उदय, या भाव वेद की चर्चा है, द्रव्य वेद का कोई सवाल ही नहीं, सारे पुरुष ही है द्रव्य वेद से तो मुनिराज है, परंतु भावों की अपेक्षा कोई नपुंसक वेद का उदय है, किसी का स्त्री वेद का उदय है, किसी का पुरुष वेद का उदय है। और हमने ये भी देखा था जन्म से जो वेद होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो उस भाव में तो वही भाव वेद रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ एक वेद का उदय है और एक संज्वलन का उदय है, और यहाँ प्रकृतियाँ कितनी, 21। तो जैसे हमने द्वितीयोक्षम में क्या देखा था, सम्यक प्रकृति की प्रथम स्थिति अंतर्मुक्त रहती है, उसके ऊपर अंतर होता है, और बाकी दो की आवली प्रमाण स्थिति छोड़कर ऊपर अंतर होता है। यहाँ वही रूल लगाना है, उदय रूप दो ही प्रकृतियां हैं, मान लेते ना पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध, तो उसकी तो अंतर्मुक्त प्रमाण प्रथम स्थिति होगी, और बाकी जो 19 है उसमें आवली प्रमाण पहली स्थिति छोड़कर उसकी गैप बड़ी हो जाएगी। देखो अभी जरा बोर्ड देख लो, ये उपशम श्रेणी की बात है। यहाँ पर उदय रूप दो प्रकृति है, अनुदय रूप 19 है। इन 19 का उदय नहीं है, सत्ता में तो पड़ी है सारी, सत्ता में भी किसी का नाश नहीं हुआ, अनंतानंद भी है नहीं, इसलिए उसको गिना भी नहीं है। चपर श्रेणी की बात छोड़ दो, क्योंकि उसने कुछ चपड़ा की है पहले, इसलिए उसकी बात अभी हम भूल जाओ, उसकी बात मत भूल जाओ। तो यहाँ जितनी प्रकृति आए प्रत्येक की अपनी अपनी निषेध रचना थी, वहाँ अंतर के पहले की क्या पोजीशन थी, ये पूरे ऊपर से नीचे तक निषेध बताया। नीचे उदयावली है, उसके ऊपर इस तरह से जो फिगर है ना, ये गुण श्रेणी है, और उसके ऊपर पूरी जो ऊपरी तन स्थिति है। अब इसमें से अंतर होने वाला है, तो अंतर होने वाला है, तो जो गुण श्रेणी का टॉप था, यह गुण श्रेणी यहाँ तक ही, यहाँ तक वो गुणित प्रमाण में गई, परंतु वो गुण श्रेणी का टॉप जिसको हम गुण श्रेणी शीर्ष कहते हैं, वो ये ग्रीन जो लिखा है वो सब अंतर में, आपको शायद वो ग्रीन दिखेगा भी नहीं लंबे से, एक काले है और बीच में ग्रीन कलर से इसका ड्राइंग बनाया, समझा नहीं, यानी ऐसी इसकी गुण श्रेणी थी, इसमें अंतर होने वाला है। तो अंतर में क्या करते हैं, पहले समय में कुछ इसके परमाणु नीचे चले गए, बनने वाले जो है उसके ऊपर भी चले जाएंगे, दूसरे समय में कुछ आएंगे, तीसरे समय में कुछ है, फिर ये पूरा जो लॉट है अंतिम समय में नीचे आएगा, फिर इसकी प्रथम स्थिति, इसकी प्रथम स्थिति और बाकी की अगली प्रमाण प्रथम स्थिति रह जाएगी, अंत में ये पिक्चर रहेगा। जब अंतर पूरा होगा तब क्रोध का उदय अंतर्मूर्त है, पर वो अंतर्मूर्त से ऊपर का जो अंतर है वो उससे भी बहुत बड़ा है, ये पूरा अंतर का काल बहुत बड़ा है। अभी तो क्रोध का उदय है, बाद में और क्या क्या होने वाला है वो तो हम बताएंगे आपको, अभी तो केवल क्रोध का उदय जो उसकी प्रथम स्थिति बनाएंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ कितने ही प्रकृतियाँ जो उदय कुछ तो उदय रूप है, पर उनका बंध नहीं है। जैसे किसी का नपुंसक वेद का उदय होगा पर उसका बंध तो नहीं है, किसी का क्रोध का उदय है, मान माया लोक का उदय नहीं फिर भी बन रहा है, यानी इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है, किसी का उदय है बंध नहीं है, किसी का बंध है उदय नहीं है, जिसका पुरुष वेद का बंध है पर उसका किसी का उदय नहीं है, ये पोजिशन हो सकती है। तो उस हिसाब से ये अंतर में जो निषेक है उसके परमाणु कहाँ डाले जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। एक तो यहाँ जो बनती है कौन सी बन रही है, पुरुष वेद और चार संयोजन। तो यहाँ के परमाणु जो है, ये जो अंतर होने वाला है, वो नए बनने के साथ ऊपर चढ़ सकते हैं। ऊपर किसमें जाएंगे, पुरुष वेद और चार संज्वलन में ही जाएंगे, जो बनती है उसी में उत्कर्षण होता है, भले वो नपुंसक वेद हो या क्रोधमान माया कुछ भी हो, यहाँ बनने वाले भी चले जाते। एक बात, दूसरी बात, जिसका उदय है उसमें भी वो जा सकते हैं, उनका भी अपने अपने उदयावली में जा ही सकते हैं, और उनका इसके अंदर भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत बड़ी रहने वाली है उदय। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में है वो बात अभी यहाँ समझाएंगे पुस्तक में, हमने अपनी भाषा में थोड़ी समझने की कोशिश की। अब यहाँ देखते हैं, देखो तो 21 प्रकृतियों का अंतर करता है, ऊपर और नीचे के निषेक छोड़कर बीच के विवक्षित कितने ही निषेकों का अभाव करना, वह अंतरकरण जानना। अब आते 172 पृष्ठ पर। अब श्रेणी चढ़ना यानी आठवा नवा गुणस्थान जो है, किसी एक संज्वलन का यहाँ उदय से वो श्रेणी चढ़ने का कार्य शुरू हो जाता है। जो क्रोध से ही चढ़ता है, उसके बाद में मान का उदय होता है, उसके बाद माया का उदय होता है, उसके बाद लोभ का उदय होता है। जो शुरू से ही मान से चढ़ता है उसका मान का उदय चलता रहता है, बाद में माया और लोभ का हो जाता है। जो माया से उदय से चढ़ता है उसका वो तो माया का जो पहली स्थिति हुई वो बड़ी होगी, शुरुआत से वो बड़ी स्थिति बनाएगा, और जो लोभ से चढ़ता है वो शुरुआत से अंत तक लोभ से ही चढ़ेगा। इसके वेरिएशन से अभी उसके बारे में, अभी यहाँ अंतर करते समय क्या पोजीशन है उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे। 172 नौ में ही अंतर, अभी तो अंतर कर
क्रोध से चढ़ेगा या मान से चढ़ेगा, तो फिर उसके बाद इसका इसका उदय आएगा, तो वो नौ में
ही चल रहा है, क्योंकि बाद में दसवें में तो सूक्ष्म लोग हो जाता है, वो भी सूक्ष्म लोग कैसे करता है, उसका उदय कैसे होता है, वो सब अपना विषय भी करना है आगे। तो 242 की टीका, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक के और स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेदों में से किसी एक के उदय सहित श्रेणी चढ़ता है। यानी उदय दो ही प्रकृतियों का, यहाँ पर मोहनी की दो ही प्रकृतियों का उदय चल रहा है। हम ज्ञानानंद दर्शनानंद की बात नहीं कर रहे, मोहनीय में दो का उदय है यहाँ पर, संज्वलन में से कोई एक और वेदों में से कोई एक। उन उदय रूप दो प्रकृतियों की तो प्रथम स्थिति अंतर्मुख स्थापना है, यानी अंतर के नीचे उसको प्रथम स्थिति कहते हैं, वो अंतर्मुख प्रमाण। तथा अवशेष 19 प्रकृतियों की प्रथम स्थिति आवली मात्र स्थापना है। इस प्रथम स्थिति प्रमाण निषेकों को नीचे छोड़कर ऊपर के निषेकों का अंतर करता है, ऐसा अर्थ जानना। अब ये 243 की टीका, अंतरायाम के अंत निषेक के, अंतरायाम का अंत निषेक यानी जहां अंतर करने वाले है, इतना अंतरायाम है यहाँ, तो ये अंत का अंत निषेक। उसके ऊपर के ने द्वितीय स्थिति का पहला निषेक, अंतरायाम के अंत निषेक के ऊपरवर्ती निषेक, वे उदय रूप और अनुदय रूप सर्व प्रकृतियों के समान है। इसका अर्थ है ये सारी अनुदय रूप प्रकृतियां हैं, ये दो उदय रूप प्रकृतियां हैं, परंतु सबका द्वितीय स्थिति का पहला निषेक एक लेवल पर सबका समान है। इसलिए अंतरायाम के ऊपर द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक सर्व प्रकृतियों का एक कालवर्ती होने से समान है। जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भाषित होता है कि नहीं, बस इतना देखना है। अंतर के ऊपर का निषेक यानी द्वितीय स्थिति का नीचे का प्रथम निषेक सबका एक समान लेवल पर एक काल में होता है। तथा अंतरायाम के प्रथम निषेक के नीचे का जो निषेक है, ये अंतरायाम, इसका नीचे का निषेक अनुदय रूप का यहाँ पर है, और अंतर के नीचे का यहाँ प्रथम निषेक उदय रूप प्रकृति का यहाँ पर है। इसमें डिफरेंस है ना, जो उदय रूप है उसका निषेक ऊपर है और जो अनुदय रूप है उसका निषेक तो इधर है। यही कहते हैं अंतरायाम के प्रथम निषेक के नीचे का जो निषेक यानी प्रथम स्थिति का ऊपर का निषेक, वह उदय रूप प्रकृतियों का परस्पर समान है, अनुदय प्रकृतियों का परस्पर समान है। उदय रूप प्रकृतियों का परस्पर समान है और अनुदय रूप प्रकृतियों का परस्पर समान है, ये इसका। परंतु उदय रूप और अनुदय प्रकृतियों का समान नहीं है, क्योंकि इनके प्रथम स्थिति में समानता नहीं है। ये अर्थ बहुत सरल लग रहा है मुझे तो, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? जो अनुदय रूप प्रकृतियां है उसकी आवली प्रमाण स्थिति बनाई पहली, और जो उदय रूप है उसके अंतर्मुख प्रमाण है, तो जो उदय रूप दो है उनकी दोनों की अंतर्मुख प्रमाण बनाई, अनुदय सबकी आवली प्रमाण, तो अनुदय अनुदय समान और उदय उदय समान, इतनी तो बात ख्याल में आई। प्रथम स्थिति का जो अंत का निषेक है वही अंतरायाम के नीचे का निषेक है। फिगर के साथ कंपेयर करो, प्रथम स्थिति का जो अंतिम निषेक है वही अंतर के नीचे का निषेक है, ये प्रथम स्थिति का जो अंत निषेक है वही अंतरायाम का नीचे का निषेक है, बात एक ही है। पुनश्च अंतर्मूर्त व आवली मात्र उदय रूप व अनुदय रूप प्रकृतियों की प्रथम स्थिति, अंतर्मूर्त किसकी है, उदय रूप की, और आवली प्रमाण किसकी है, अनुदय रूप प्रकृतियों की, उससे संख्या गुणा ऐसा अंतर्मूर्त मात्र अंतरायाम है। ये जो उदय रूप है समझाने के लिए इतनी बता रही, इक्वल लगता है अंतर, परंतु यथार्थ में देखो तो जितनी प्रथम स्थिति है उससे भी संख्या गुणा अंतर है। जितने निषेकों का अभाव किया उसका नाम है अंतर, तो प्रथम स्थिति के लिए जितना नीचे छोड़ दिया है उससे भी संख्या गुणा, संख्या गुणा कुछ भी हो सकता है, 10 गुना 20 गुना कुछ भी, इतना वो अंतर का आया है, ये उसका अर्थ होता है। इतने निषेकों का अभाव करता है वहां उदयमान प्रकृतियों के तो गुणश्रेणी शीर्षके निषेक तथा उनसे संख्या गुणा उपरीतन स्थिति के निषेध उनको ग्रहण कर अंदर करता है। फिर से यहाँ का गुणश्रेणी शीर्ष से यहाँ तक, देखो ये काला है और ऊपर उसके ग्रीन है, यहाँ तक उसकी गुणश्रेणी थी। अब ये गुणश्रेणी थी तो इसके इतने जो निषेक है वो गुणश्रेणी शीर्ष कहलाएंगे, वो सब अंतर में चले जाने वाले, क्योंकि जब गुणश्रेणी बनाई थी तब कितनी बनाई थी, अपूर्व कर प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस सूक्ष्म सांप्राय प्लस और थोड़ा इतनी बनाई थी, है ना। तो उसमें से जो विशेष अधिक, जो ग्यारहवें का कुछ संख्या का भाग इतनी विशेष अधिक बनाई थी, उतना गुणश्रेणी शीर्ष है, वो सब अभी अंतर में चला जाएगा। इसका अर्थ ये प्रथम स्थिति कब खलास होगी, सूक्ष्म सांप्राय के अंत में, है ना। सूक्ष्म सांप्राय से जो इतना विशेष अधिक बताया था, तीनों गुणस्थान का मिलकर जो काल है उससे थोड़ा अधिक हमने गुणश्रेणी बनाई थी, तो जो थोड़ा अधिक जो था वो कभी अंतर में चला जाएगा, यानी जब ग्यारहवा गुणस्थान आएगा ये इसका उदय हो जाएगा तब उसके पश्चात, यानी ये जो निषेक अभी यहाँ तो हमने ये निषेक, पर इसके बाद यहाँ और निषेक रचना होने वाली है, इसलिए वो हम इसको नहीं कह सकते हैं। फिर भी समझाने के लिए, ये जो गुणश्रेणी जो बनाई थी ना, वो गुणश्रेणी जितनी बनाई थी वो उसका टॉप सब अंदर में चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक नीचे से तीसरी चौथी लाइन देखो, उदयमान प्रकृतियों के तो गुणश्रेणी शीर्ष के निशे तथा उनसे संख्यात गुणा उपरीतन स्थिति के निशे उनको ग्रहण कर अंतर करता है। अंतर करता है वहां के परमाणु कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसे डाले जाएंगे, यानी ये गुणश्रेणी शीर्ष और उससे ऊपर उससे संख्या गुणा ऊपर के नीचे, इन सबका अभाव करके वहाँ अंतर बनेगा। ये उदय रूप की बात है। अनुदय रूप में क्या होगा, अनुदय रूप में केवल हमने नीचे उदयावली छोड़ी है तो उसकी पूरी गुणश्रेणी जो है वो सब अंतर में चली जाने वाली। अनुदय रूप जो है यहाँ पर एक क्रोध का उदय है, तो मान माया लोक की जो गुणश्रेणी बनी थी वो तो पूरी अंतर में चली जाएगी। पुरुष वेद का उदय है तो नपुंसक वेद स्त्री वेद की भी अपनी ऐसी रचना थी तो उसकी पूरी गुणश्रेणी अंतर में चली जाएगी। अंतर यानी जिनका अभाव करना है वो अंतर, उनका अभाव होने वाला है। अनुदय प्रकृतियों का पूरा गुणश्रेणी, पूरी गुणश्रेणी और उसके ऊपर के कुछ निशे, इनके परमाणु नीचे ऊपर जाके नष्ट हो जाएगी, वहाँ बीच में अंतर होगा। और जो उदय रूप प्रकृतियाँ मान लेते पुरुष वेद और क्रोध संग्रह, उसका केवल गुणश्रेणी शीर्ष टॉप और ऊपर के नीचे ये नष्ट होकर वहाँ अंतर बनेगा। ये बात ख्याल में है ना, क्योंकि अभी हमने दर्शन होने में अंतर की बात देखी तो यहाँ तो समझने के लिए थोड़ा आसान है। आगे बढ़ते, और अनुदय प्रकृतियों का यहाँ पाए जाने वाला अवशेष गुणश्रेणी आयाम, यहाँ पाने वाला क्यों कहा, क्योंकि जब अपूर्वकरण में शुरुआत में आयाम बनाया था, अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस सूक्ष्म सांप्राय प्लस थोड़ा था, अब यहाँ कितना रहा, अपूर्वकरण का काल चला गया, अनिवृत्तिकरण का संख्या दो भाग चला गया है, अभी गुणश्रेणी पूरी कितनी थी उसकी, तो अनिवृत्तिकरण का शेष काल प्लस सूक्ष्म सांप्राय का काल और फिर एक्स्ट्रा तो उतना उसका था। तो अनुदय प्रकृतियों का यहाँ पाने अवशेष, अवशेष है अभी जितना बचा है, कितना बचा है, अनिवृत्तिकरण का शेष काल प्लस सूक्ष्म सांप्राय प्लस और थोड़ा, और उनसे संख्यात गुणा उपरीतन स्थिति के निशे उनको ग्रहण कर अंतर करता है। अनुदय प्रकृतियों की पूरी गुण श्रेणी उसका आयाम और प्लस ऊपर और अनेक निशे इसका अभाव करता है, और जो उदय रूप प्रकृतियाँ हैं उनका गुणश्रेणी शीर्ष और ऊपर के नीचे इनका अभाव हो जाता है। अब यहाँ 244 की टीका, अंतरकरण के प्रथम समय में, अब जब अंतरकरण शुरू किया तो उस समय स्थिति कांडक घात भी हो रहे हैं, वहाँ स्थिति बंधाक्षरण भी हो रहा है, अनुभव कांडक घात ये सब चल ही रहा है वहाँ, तो वहाँ होने वाला जो स्थिति कांडक घात का काल है और अंतर करने का काल है ये समान काल है, और स्थितिबंध घटकर उतना का उतना स्थितिबंध होने का काल है, ये तीनों यहाँ का समान काल, ये यहाँ बता रहे इस पैराग्राफ में। अब पढ़ेंगे,
अंतकरण बचेगा, तो बचेगा तब इतने में ही अंतकरण हो जाएगा कि जब बचेगा तब से अंतकरण चालू होगा।
फिर से प्रश्न,
जो उदय रूप प्रकृतियां हैं,
उदय रूप प्रकृति है
उसका अंतिम अंतर जो अनिवृत्त मतलब ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म संसार के अंतिम समय तक का जो अंतर्मूर्त कर रहा है, अंतर्मूर्त शेष बचा है, तो ये जो अंतर्मूर्त शेष बचा है तो यहाँ अंतर्मूर्त के पहले समय में आते ही अंतर्करण हो चुका है कि अब पहले समय से अंतर्करण
नहीं, नहीं देखो जो अभी अभी तो इसके आगे बहुत कुछ बाकी है क्योंकि ये सूक्ष्म संप्रदाय तक ये चलने वाला नहीं है क्योंकि ये तो अभी क्रोध की पहली स्थिति बनाई और यहाँ वेद की है। अब वेद का उदय तो मिल जाएगा, बहुत पहले मिलेगा, अंतर करने के पश्चात वेद का उदय मिल जाने वाला, थोड़े काल के बाद क्रोध का उदय मिलेगा, ये सब नया नष्ट होकर यहाँ तक आ जाएगी, ऊपर से परमाणु आकर मान की प्रथम स्थिति बनेगी, वो छुटते छुटते अगली प्रमाण मिल जाएगी, फिर माया के परमाणु नीचे आएगी वो भी अंतर्मूल प्रमाण स्थिति करेंगे वो भी गढ़ जाएगी, फिर लोक के परमाणु नीचे आएगी उसकी भी अंतर्मूल प्रमाण स्थिति बनेगी, उसमें भी सूक्ष्म बादल लोक से सूक्ष्म लोक हो जाएगा, फिर सूक्ष्म लोक के परमाणु नीचे आएंगे उसकी भी प्रथम स्थिति बनेगी, तब जाके सूक्ष्म साम्राज्य गुणस्थान हो जाएगा। अभी बहुत काल बाकी है, आपके प्रश्न बाद में पूछना हाँ क्योंकि ये तो समझाने के लिए हमने केवल इतना ही बताया, वो बहुत बड़ा अंतर है और उसमें अनेक बातें होने वाली है।
आज उपशम नहीं हो
अभी अंतर करने का कार्य चल रहा है, उसके पश्चात एक एक प्रकृति क्रम से उसके कहाँ उपशम होता है, क्या क्या बातें होती है, बहुत सारी प्रोसेसेस यहाँ चालू हो जाएगी, बहुत अनेक प्रोसेसेस हो गया। अभी तो अंतर होता है उसमें क्या बातें होती उसकी बात अभी हम चल रहे हैं। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं 244 की टीका। अंतरकरण के प्रथम समय में यानी अंतर शुरू किया उसी समय में वहाँ स्थिति कांड घात भी शुरू हुआ है नया वहाँ का, उसी समय में वो स्थितिबंध अपसरण होकर नया स्थितिबंध भी शुरू हुआ है। पूर्व स्थितिबंध से असंख्या गुणाहीन, देखो सारा ही स्थितिबंध कहाँ तक आ पहुँचा था क्रमकरण के अंत में, पल्ले के असंख्यात विभाग में असंख्यात, और वहाँ हर बार जो कटौती होती थी वो असंख्यात बहुभाग प्रमाण होती वही बता रहे। तो पूर्व स्थितिबंध से असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुणाहीन का अर्थ होता है असंख्यात विभाग प्रमाण नया स्थितिबंध होगा। असंख्यात बहुभाग तो कटौती हुई और बंद कितना हुआ, असंख्यात वे भाग प्रमाण हुआ। जैसे लिखो हम कोई 64 संख्या है तो 64 संख्या चार गुणाहीन हुई यानी क्या कितनी हुई, 16 हुई यानी चौथे भाग प्रमाण हुई। चौथे भाग प्रमाण होने को चार गुणाहीन कहते हैं, चार से भाग दिया तो कितनी संख्या आई यानी 64 था तो बहुभाग यानी 48 कटौती होगी और 16 इतना रह गया, ये उसका अर्थ होगा। यहाँ असंख्या यहाँ तो हमने चौथा भाग किया, वहाँ तो असंख्यात से भाग देकर वो बहुभाग नष्ट हो गया यानी नष्ट हो गया उसकी कटौती हुई और असंख्यात से भाग प्रमाण इतना नया बंद हुआ, इसलिए कहते असंख्यात गुणाहीन ऐसा नया बंद होता है सभी कर्मों में। सभी कर्मों की स्थिति का बंद कितना हो रहा है वहां पर, ये सत्व की बात नहीं बंद की बात है। कर्मकरण के अंत में हमने क्या किया था देखा था, पल्ले के असंख्यात विभाग वो भी अलग अलग मोहनीय से वो असंख्यात गुना था वो असंख्या उससे कुछ मतलब नहीं, अपना अपना जितना हो रहा था उसमें हर बार कटौती कितनी हो जाएगी, असंख्यात गुणाहीन होकर नया बंद होगा यानी असंख्यात बहुभाग इतनी कटौती होगी, यही कह रहे असंख्या गुणाहीन ऐसे और ही स्थितिबंध का और यानी अन्य ही स्थितिबंध का और पूर्व स्थिति कांडक से कुछ ही ऐसे और ही स्थिति कांडक का, स्थिति कांडक छोटे छोटे हो रहे हैं क्योंकि स्थिति घट रही है तो कांडक भी वैसे छोटे छोटे हो गए, और पूर्व अनुभाग कांडक से अनंत गुणाहीन ऐसे और ही अनुभाग कांडक का प्रारंभ होता है। जितने बार अनुभाग कांडक होंगे उतनी बार वो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन हो रहा है सत्ता वाला। वहाँ एक स्थिति कांडक कर्म का जितना काल है उतने काल द्वारा अंतरकरण करता है, परंतु उतने ही काल में अनुभव कांडधार सज्जार हो जाएगा, ये उनका कहना है। उसकी समाप्ति होते ही एक स्थिति कांडक घात हुआ, उस काल में संख्या हजार अनुभव कांडकों का घात हुआ, ऐसा अर्थ जानना। यानी यहाँ अंतर कर रहा है, उसी काल में और क्या क्या प्रोसेस हुए उसकी बात यहाँ बता रहे। अब 245 की टीका, अंतर के निमित्त उत्कीर्ण किए हुए द्रव्य को, उत्कीर्ण यानी वहां से हटाए, वहां से नष्ट होकर अन्यत्र डाले गए, उसको उत्कीर्ण किए गए, अंतर आयाम में नहीं देते, क्योंकि जहाँ जिन निषेकों का अभाव करना है उनके परमाणु निकाल कर उसी वहीं पर डालेंगे क्या? जैसे हमें एक न्याय गड्ढा करना है तो हमने बहुत बड़ा ऐसा एरिया नक्की किया, इसे गड्ढा करेंगे तो गड्ढे का निकाल कर उसी में डालेंगे तो भाई गड्ढा कब होगा? तो वो अन्यत्र डाले जाते। तो अंतर के निमित्त उत्कीर्ण किए हुए द्रव्य को अंतर आयाम में नहीं देते, उसका भाव है अंतरायाम के निषेकों के द्रव्य का अभाव करके अंतरायाम के निषेकों में ही नहीं मिलाया जाता, तो कहाँ मिलाया जाता है वह कहते हैं नीचे, और जो नए बनते हैं उसे ऊपर भी चले जाएंगे। अब उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको, सब रिडल्स है आपको बताना है। स्त्री या नपुसक वेद और किसी एक कषाय सही श्रेणी चढ़ने वाले के, हम मान लेते हैं स्त्री वेद का उदय है और संज्वलन मान का उदय मान लो। अब उस जीव की जो पोजीशन, उदय किसका है? स्त्री वेद और मान, ऐसे के जिनका उदय नहीं पाया जाता केवल बंद ही पाया जाता है, ऐसे कौन है?
पुरुष वेद
है। और जिनका उदय नहीं परंतु बंद है, मान को छोड़कर क्रोध माया और लोभ, उदय नहीं है बंद है, ऐसे अन्य तीन संज्वलन कषाय इन चार प्रकृतियों के द्रव्य को उत्कर्षण करके, उत्कर्षण कहाँ का हो रहा है मान लेते हैं, या तो पुरुष वेद लिखा है मान लेते हैं, ये स्त्री वेद और ये संयोजन मान है, तो उसके जो अंतर का अंतर करना है उसके द्रव्य को उत्कर्षण करके, उसका बंध नहीं हो रहा है, अन्य का जो बंध नहीं हो रहा है, इसे देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, वे उदय किसका है? स्त्री वेद का हम मान लेते हैं और मान का है, उसके सही चढ़ने वाले के जिनका उदय नहीं है इसे पुरुष वेद है, और अन्य तीन संज्वलन कषाय इन चार प्रकृतियों के द्रव्य को उत्कर्षण करके, तो तत्काल जो अपना उसी प्रकृति का बंध हुआ उसकी आबादा को छोड़कर उसके द्वितीय स्थिति में प्रथम निषेक से लेकर यथायोग्य अंत तक निक्षेपण करता है, इसका अर्थ बताती हूँ। और अवकर्षण करके उदय रूप जो अन्य कषाय है उसकी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है। फिर से इसको पढ़ेंगे, स्त्री वेद का उदय और हमने मान लिया मान का उदय, अब यहाँ जो पुरुष वेद और अन्य तीन कषाय की बात हो रही है उनका द्रव्य कहाँ जाएगा? हमने मान लिया ये स्त्री वेद का द्रव्य और ये मान है, तो यहाँ का जो पुरुष वेद का और अन्य तीन संज्वलन उसका द्रव्य कहाँ जाएगा? तो वहाँ पुरुष वेद भी बन रहा है और चारों संज्वलन तंत्र है ये भी बंद है, तो अपने बंद वहाँ बंद होता है तो ये आबादा के ऊपर इनकी आबादा इतनी बड़ी होगी और उसके ऊपर उसके निषेक होगा, तो कहाँ तक ऊपर चढ़ेंगे? यथा योग्य ऊपर तक चढ़ेंगे, जहाँ तक स्थिति बंद है वहाँ तक ऊपर चढ़ सकते, तो उनके परमाणु तो उनके ही बनने वाले प्रकृतियों में ऊपर भी जाएंगे, एक तो उत्कर्षण होकर वहाँ जाएंगे क्योंकि वे प्रकृतियाँ बनने वाली है, वो उदय रूप नहीं है पर वो बन रही है, तो उनके परमाणु अपने प्रकृतियों में चले जाएंगे। और अपकर्षण होके ये जो हमने यहाँ स्त्री वेद और मान माना है और हम बात कर रहे हैं पुरुष वेद और अन्य तीन की, उनके यहाँ का द्रव्य कहाँ जाएगा? एक तो उत्कर्षण करके अपनी स्थिति में जाएगा या अपकर्षण करके उदय रूप स्थिति में, इनके अपने में भी चला जाएगा, या उन्हें यहाँ अपने में भी जाएगा और यहाँ उदय रूप में भी जाएगा। देखो अपकर्षण करके यहाँ तो उदय रूप की बात ली है क्योंकि ये तो अवधि प्रमाण है, ये उदय रूप इसमें चला जाएगा, अवकर्षण होकर उदय रूप प्रकृतियों में चला जाएगा, उसकी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है, ये हो गए एक कॉम्बिनेशन। अब दूसरा कॉम्बिनेशन हाँ ये संक्रमण चल रहा है क्योंकि सजातीय में संक्रमण तो होता ही रहता है और संक्रमण के लिए कंडीशन वो संक्रमण यहाँ नहीं कहेंगे अपकर्षण नहीं है अपकर्षण है इसको संक्रमण नहीं कहेंगे हाँ जा रहा है परंतु वो आकर्षण कर सजाती में तो जा ही सकते आपस में सबका आपस में संक्रमण ऐसा तो चलता ही रहता है अभी भी मिथ्या दृष्टि से लेकर सर्वत्र क्रोध मान माया लोग जो सारे प्रकृतियाँ हैं कषाय हो या नौ कषाय उनका द्रव्य आपस में संक्रमित होता ही रहता है। अब जिनका बंधन नहीं है उत्कर्षण के लिए हाँ और यहाँ पर भी जो संक्रमण है यहाँ तो ये उदय रूप है उसमें चले जाते हैं जैसे हमने देखा था दर्शन मोनी देवी कि मिथ्यात्व का या हमें जो उस रूप चला जाता है समान में यहाँ पर भी ये जो सारे जिसका हमने क्या देखी कंडीशन यहाँ पर यानी पुरुष वेद और अन्य जो है वो स्त्री वेद में चला जाए यहाँ तो उल्टा पुल्टा संक्रमण है अंतर करने के बाद वो उल्टा पुल्टा संक्रमण भी रुकेगा यहाँ पर कोई भी प्रकृति किसी में भी संक्रमित हो रही है यहाँ की बात कर यहाँ अंतर करने की स्थिति में ये पोजीशन है। देखो अपकर्षण करके उदय रूप जो अन्य कषाय है उसकी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है ये तो हमने स्त्री वेद और मान का मानकर उनका उदय था और वहां पुरुष वेद और तीन संज्वलन की बात क्या होती है उसकी बात होने आ रही। अब यहाँ देखते हैं दूसरा पॉइंट यानी दूसरा कॉम्बिनेशन जिनका बंधन नहीं है केवल उदय ही पाया जाता है ऐसे स्त्री वेद और नपुंसक वेद के अंतर संबंधी द्रव्य को अपकर्षण करके अपनी प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है क्योंकि उसका उदय है मान लेते स्त्री वेद या नपुंसक वेद कोई है तो यहाँ का कहाँ जा रहा है अपनी प्रथम स्थिति में तो जाएगा ही जाएगा उसकी अपनी ही प्रथम स्थिति में निक्षेपण होगा अवकर्षण होकर नीचे आ जाएगी और उत्कर्षण करके ये मान लेते हैं स्त्री वेद के परमाणु में इनका उत्कर्षण होगा कि नहीं होगा वो अपना अंतर स्त्री वेद का बंधन है पर पुरुष वेद का हो गया बिल्कुल। देखो फिर से पढ़ती हूँ इसको अब यहाँ जिसका बंधन नहीं है केवल उदय ही है ऐसे स्त्री वेद या नपुंसक वेद के अंतर संबंधी द्रव्य को अपकर्षण करके तो अपनी प्रथम स्थिति में देते हैं उसके लिए तो हमारी मंजूरी है और उत्कर्षण करके वहाँ बंधने वाली अन्य कषाय की द्वितीय स्थिति अन्य कषाय है पुरुष वेद भी और चार संज्वलन भी है यानी यहाँ के नपुंसक स्त्री वेद का उदय है तो ये जो अंतर करके कुछ परमाणु तो स्त्री वेद की प्रथम स्थिति में आएंगे और कुछ ऊपर बनने वाले पुरुष वेद और चारों संज्वलन उसमें चले जाएंगे बन के समय ही उसके उसमें उत्कर्षण होकर उनमें चले जाते हैं उसमें जाए बनने वाले में उत्कर्षण होकर चले जाए हाँ हो सकता तथा जिनका
बंधन ही
है हाँ उत्कर्षण हो रहा वही तो कहा ना स्त्री वेद का बंधन नहीं है स्त्री वेद का उदय है तो उदय की प्रथम स्थिति के ऊपर के अंतर के निषेध का नाश करके अभाव करके उनके परमाणु एक तो उनकी पहली स्थिति में तो आ ही गए स्त्री वेद के परमाणु स्त्री वेद की प्रथम स्थिति में आ गए और कुछ ऊपर चले गए उत्कर्षण के लिए नियम क्या है नया बंध चाहिए पर ये तो सजा दी है ना सारे मोहनीय के ही भेद है तो वहाँ पुरुष वेद और चार संज्वलन में चले जाएंगे उत्कर्षण के साथ वो संक्रमण वो ऐसा उत्कर्षण होगा तथा
उत्कर्षण के लिए की आवश्यकता
नहीं तथा अवकर्षण करके उदय रूप अन्य क्रोधादि कषाय की प्रथम स्थिति में संक्रमण होता है जैसे हमने मान लिया ना कि स्त्री वेद का उदय है और यहाँ मान कषाय का उदय है तो यहाँ से परमाणु स्त्री वेद की प्रथम स्थिति में आए पुरुष वेद और चार संघवेद की द्वितीय स्थिति में गए और यहाँ मान लिए तो इसके कुछ परमाणु मान रूप होकर इसकी प्रथम स्थिति में गया, तीनों ही रूप से हो गए। हाँ कषाय महाकषाय एक ही है, चारित्र मुनि है। चारित्र सजातीय प्रकृतियों का आपस में संक्रमण होता ही रहता है, यहाँ तो ठीक है श्रेणी की बात, पर अदरवाइज ऐसे भी होते रहते हैं, बनने वाले की एक दूसरे में उसका संक्रमण होता है, चारों भी जा रहे क्योंकि चारों का बंध है, बंध चारों का है, मान का उदय होने पर भी बंध चारों का है। यहाँ पर यहाँ क्रोध मान माया रोग सब बंध रहे तो चारों भी चले जाएंगे।
वेद में खाली पुरुष वेद में
हाँ वेद में पुरुष वेद का ही बंद होगा, चारों बंद है अभी तो, चारों बंद है अंतर करण के समय में तो चारों ही बंद है। तो उदय रूप प्रकृति रूप परिणाम होता है इतना भी सिद्धांतों से विशेष जानना, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ। हाँ अब तीसरा कॉम्बिनेशन बताए, जिनका बंद भी है उदय भी पाया जाता है ऐसा क्या होगा? पुरुष वेद और कोई भी एक संज्वलन बंद भी और उदय भी है, तो जिनका बंद भी है उदय भी पाया जाता है ऐसे पुरुष वेद और कोई एक कषाय उनके अंतर संबंधी द्रव्य को अपकर्षण करके उदय रूप प्रकृतियों की प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है। देखो एक पुरुष वेद का उदय है और जैसे यहाँ लिखा है पुरुष वेद का उदय है और क्रोध संज्वलन क्रोध का उदय, तो उनके अंतर संबंधी निषेकों का अभाव करके कहाँ जाएंगे? पुरुष वेद की बात करते हैं, पुरुष वेद के अंतर संबंधी निषेक उसके परमाणु पुरुष वेद के प्रथम स्थिति में भी जाएंगे और क्रोध के प्रथम स्थिति में भी जाएंगे। यहाँ लिखे ना उदय रूप प्रकृतियों की अपनी अपनी नहीं लिखा, प्रकृतियों की प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है और उत्कर्षण करके वहाँ बनने वाली प्रकृतियों की द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है। यानी पुरुष वेद के यहाँ परमाणु ऊपर बनने वाले पुरुष वेद और चार संज्वलन इसके भी पुरुष वेद और चार संज्वलन में ये निक्षेपण होते, बनने वाले में ऊपर चले जाते, ऊपर जाने के लिए बनने की आवश्यकता बनने वाले
लेकिन जब नीचे जाएंगे तो अपने अपने खाते में ही जाएंगे।
नहीं वो भी उसमें जिसकी प्रथम स्थिति उसमें जाएगी।
हाँ मतलब पुरुष वेद का है तो प्रथम स्थिति में
पुरुष वेद में प्रथम स्थिति में भी जाएगा, क्रोध की भी प्रथम स्थिति में पुरुष वेद के परमाणु जाएंगे और क्रोध के भी पुरुष वेद में भी जाएंगे और क्रोध में भी जाएंगे इस
तरह।
हाँ उदय रूप में चले जाते हैं वो जिसकी प्रथम स्थिति है उसमें चले जाते हैं।
अगर यहाँ पे होता तो
क्रोध
में जाते
हाँ जाते अपने में भी जाते
पर प्रथम स्थिति के अंदर तो अपने अपने खाते में बोले एक वेद और एक कसाई तो प्रथम स्थिति के अंदर तो
जिसकी प्रथम स्थिति लंबी है उसमें जाते हैं क्योंकि इनका तो अभाव करना है तो उसमें जाने के फायदा क्या है। सब जगह पहले मिथ्या तो गुणस्थान में भी होता है, एक क्रोध है वो तो जो अन्य पंद्रह रूप से भी हो जाता है, अनंतानुबंधी भी आपस में हो जाते हैं, अनंतानुबंधी भी संज्वलन वगैरह होते रहते हैं ये सब आप। हाँ वो सत्ता में पड़े हुए की बात है, उदय की बात नहीं, उदय जो जिसका चल रहा है उसी का चलेगा, वो कोई चेंज होकर उदय में नहीं आएगा। अभी तो अंतरकरण चल रहा है हाँ उनका अप्रश्न हाँ उनका ऐसा है जब तक वो उदय में नहीं थे तभी ऐसा ही था उनका। यहाँ प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान सभी पड़े हैं ना, उनका उदय नहीं था, संज्वलन का उदय था तो उसके उदय रूप निशे कुछ रूप होकर उदय में आ रहे हैं। अभी तो उनका पूरा ही अंतर करके अभाव करने वाले हैं। नहीं त्रिवेद का बंध नहीं है, बंदर पुरुष श्रीवेद की बंद विच्छिति दूसरे में हुई, नपुसक वेद की बंद विच्छिति पहले में हुई, यहाँ मात्र पुरुष वेद का ही बंद हो रहा है पर उसके परमाणु ऊपर पुरुष वेद में जाते थे ऐसा नहीं होता है। श्रीवेद के परमाणु उत्कर्षण होकर बंधने वाले पुरुष वेद और चार संकलन में जाएंगे उदय हो सकता है, यहाँ उदय तीनों ही वेद में से किसी एक वेद का उदय, इसीलिए इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए अपना भी समय होने पाया, हो गया, एक घंटा हो गया, अभी थोड़ा रुक के थोड़ी देर के बाद आएंगे। मुझे इस पुस्तक में से कुछ करेक्शन भी बताना है, जब समय आएगा दो दो पाँच पाँच मिनट हर घंटे के लेक्चर के बाद मैं बताऊंगी। कहीं कहीं जैसे कल हमने असंख्यात और अनंतात किया ना, ऐसे कुछ जगह ऐसे जो कुछ त्रुटियां हमारे स्वाध्याय के दरमियान ख्याल में आ गई उसको हम करेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि सबकी पुस्तकों में एक साथ करेक्शन हो जाएगा। यही रुकेंगे, चौबीसों भगवान।